SBS हिंदी। दोस्तों, आप सब जानते होंगे, आप सब ने गौर किया होगा कि बदलते समय के साथ साथ सोशल मीडिया जो है बहुत ही शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरता है और हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी सोशल मीडिया का एक भाग है यूट्यूब चैनल्स, जो सामान्यतर वीडियोस के लिए बहुत ही लोकप्रिय चैनल्स हुआ करती थी। अब वो धीरे धीरे मीडिया यानी कि न्यूज़ चैनल्स के लिए भी लोकप्रिय हो रही हैं। यूट्यूब पर विविध वरिष्ठ पत्रकार और जो मुख्य प्रवाह का मीडिया है वो अपनी न्यूज़ चैनल वहाँ पर शुरू कर रहे हैं। कुछ अंश तक बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ चैनल्स हैं जो यूट्यूब पर हैं, वो लोकप्रिय भी हुई हैं। भारत सरकार पर अक्सर ये आरोप लग रहे हैं आजकल कि मीडिया पर यहाँ पर अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप है। ऐसे माहौल में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उर्मिलेश जी से जानने का प्रयास करते हैं इस बदलते समय में यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स की भूमिका के बारे में। उर्मिलेश जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
थैंक यू।
उर्मिलेश जी, आपका पत्रकारित्व के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव रहा है और आज आप एक यूट्यूब न्यूज़ चैनल के साथ, यूट्यूब मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपसे इस बात पर पूछना चाहूँगी कि ये जो वर्तमान समय में बहुत बदलाव आया है, सोशल मीडिया बहुत ही शक्तिशाली रूप से बाहर आ रहा है, ऐसे में यूट्यूब की जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो किस तरह से समाज में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, अगर संक्षिप्त में बता सकते हैं कि क्यों भारत में ये लोकप्रिय हो रही हैं, क्या क्या कारण है इसके शुरू होने के?
देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं भारत के पहले बारे में बताऊं कि भारत में हाल के वर्षों में सोशल मीडिया का काफी विस्तार हुआ है और इसकी कई वजहें हैं, जिन वजहों को मैं अभी संक्षेप में आपको बताऊंगा आपके श्रोताओं के लिए। लेकिन जो विस्तार हुआ है, जिसे स्पेसिफिकली अगर आप कहें यूट्यूब चैनल, तो उसमें भी बहुत सारे नए पहलू जुड़े हैं। इसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये कारण है कि भारत में जो मेनस्ट्रीम मीडिया है हाल के वर्षों में, बहुत पहले भी, ऐसा मैं नहीं कहता कि भारत में मेनस्ट्रीम मीडिया का कोई स्वर्ण युग था और बहुत महान मीडिया था, बहुत ज्यादा वो समावेशी था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। उससे गलतियां पहले भी होती थी, पहले भी उसकी आलोचनाएं होती थी, उसके प्रो पीपल न होने या प्रो एलीट होने या प्रो रूलिंग क्लास होने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो मीडिया में, मेनस्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें घटित हुई हैं जिनकी वजह से लोग नाराज हुए हैं, और लोगों का से मेरा मतलब है कि वे लोग जिनकी जुबान उतनी समाज में नहीं सुनी जाती, जिनकी बातों को उतना नहीं सुना जाता, जो आम लोग हैं, जिनके पास न तो सत्ता है, न तो स्थानीय स्तर पर जिनके पास मंच है कि वो अपनी बात कह सकें, और जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी आम लोगों से चलती है और आम लोगों का तंत्र है। तो ऐसे लोगों को लगता था कि मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसे वो अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो दरवाजा भी मीडिया ने बंद कर दिया हाल के वर्षों में, और आम लोगों की बातें अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में, खासकर टेलीविजन चैनलों में नहीं व्यक्त होती है, नहीं आती है। इस वजह से सोशल मीडिया जब प्लेटफॉर्म्स मिले लोगों को, तो अचानक ऐसा लगा भारत में, क्योंकि इतनी विशाल आबादी का देश है, लोगों को ऐसा लगा कि अरे, ये तो हमारे लिए कुछ नया चमत्कार है, हमारे लिए, हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा औजार है, और उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाने लगा। उसमें दुरुपयोग भी हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल बहुत ही मीनिंगफुल प्रयोग हुए, बल्कि बहुत ही मिसयूज भी कई जगह हुआ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन अब जो यूट्यूब का चैनल है वो कई अच्छे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ एक ने बहुत अच्छी कीर्तिमान स्थापित किए, मिलियंस से उनके व्यूअर्स चले गए हैं, बहुत ही लाखों में पहुंच गए हैं। तो अब और उससे अच्छे डिस्कशन भी हो रहे हैं, अच्छे मोनोलॉग भी आ रहे हैं, अच्छी बातें, अच्छे न्यूज भी पेश किए जा रहे हैं, तो इसका एक असर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भारत में सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स को एक बेहतर मुकाम हासिल करना बाकी है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में ये निकले हैं, इसमें मुझे लगता है कि धीरे धीरे कंसोलिडेशन होगा, सुदृढ़ीकरण होगा, और कुछ लोग शायद और बेहतर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
उर्मिलेश जी, तो जैसे कि आपने कहा कि यूट्यूब की जो न्यूज चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को आवाज़ देती है, हर एक व्यक्ति को सशक्त करती हैं कि उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई जाए। आप ये भी कहते हैं कि ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज सही आ रही है, कौन सी चीज गलत आ रही है, यानी कि फेक न्यूज की बात। अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मीडिया को हमेशा से लोकशाही की चौथी जागीर के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग दिखाया गया है, बताया गया है लोकशाही का। क्या आप मानते हैं कि YouTube चैनल्स जो हैं वो इस चौथी जागीर बनने के लिए सक्षम है? क्या आने वाले समय में हम YouTube पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको, जो मुख्य प्रवाह की न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी जगह लेते हुए देखेंगे?
नहीं, यहाँ मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा आर्गुमेंट देते हैं कि सोशल मीडिया जो है वही मेनस्ट्रीम मीडिया बन जाएगा। मैं थियोरेटिकली इससे बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया है और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी अपनी जगह है। भारत की एक आबादी, इतनी विशाल आबादी है कि उसमें इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है अभी भी बहुत बड़ा है। ये बात सही है कि बहुत बड़ा है, लेकिन इतना नहीं है कि हम मान लें कि वो रेडियो का स्थान ले लेगा, टीवी चैनल का स्थान लेगा। अब जैसे हम अपने प्रोग्राम्स करते हैं तो मेरे कई ऐसे दवाए के प्रोग्राम है या न्यूज फीड के प्रोग्राम है जो लाख लोग देखते हैं, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख व्यूअर्स पता जाते हैं 2 दिन के अंदर। लेकिन इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि मेनस्ट्रीम मीडिया का विकल्प सोशल मीडिया नहीं हो सकता। हमें जो जर्नलिज्म में लोग काम करने वाले लोग हैं उनको भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में, जहां साक्षरता बहुत बाद में शुरू हुई है यूरोप वगैरह के मुकाबले या अमेरिका के मुकाबले, जहां इतना नया अभी साक्षर वर्ग पैदा हुआ है, खासकर गरीबों में जो उत्पीड़ित समाज है देश का, तो वहां के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत से न इनकार करते हुए भी मेरा ये कहना है जैसे मीडिया को कंसोलिडेट करना होगा, उसे डेमोक्रेटाइज करना होगा, उसमें जो एक ही वर्ग, एक ही वर्ण के लोगों का वर्चस्व है उसको तोड़ना होगा कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव एक्शन से या अंदर की प्रोसेस से, ताकि अलग अलग लोग आ सकें। जैसे यूरोपियन मीडिया है तो वो उसका आप चेहरा देखिए, हमें कुछ मुल्कों में जाने का जब भी मौका मिलता है तो हमें क्यों बेहतर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी बेहतर दिखाई देती है। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे कागजों में है, हमारे कानूनों में है, लेकिन वो जमीन पर नहीं है। और यही कारण है कि हमारा मीडिया भी डेमोक्रेटिक नहीं है, हम इसको खुलेआम कहते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ तो भारत में मीडिया कहीं से भी नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर उसको स्तंभ कोई बनना भी है तो पहला स्तंभ बनना पड़ेगा, वो भी समाज व्यवस्था का। हम राज व्यवस्था के अंग बने वो कोई मतलब उसका नहीं है। राज व्यवस्था के अंग अलग है और डेमोक्रेसी और हमारे समाज के अंग अलग है। तो हमारे मीडिया को मैं समझता हूँ कि जो अभी फौरी जरूरत है कि कैसे उसमें डाइवर्सिटी लाई जाए, वो हमारा मीडिया डाइवर्स नहीं है और न तो कारपोरेट डाइवर्स है। देखिए आप अमेरिका का देख लीजिए, अमेरिका में आज की तारीख में 90% से ऊपर जो मीडिया हाउसेज हैं जो सभी कारपोरेट ही है, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो 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 निगेटिव पॉलिसीज हैं, जो वर्ल्ड की पीस को डिसरप्ट करने का जिनमें जोखिम है, उन सबके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ तन के खड़े हैं। लेकिन भारत में देखिए, भारत में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है और उनके खिलाफ भारत का मीडिया बिल्कुल नहीं बोलता, कारपोरेट बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि अमेरिकन कारपोरेट में भी डाइवर्सिटी है और इंडियन कारपोरेट जो समूह है उसमें डाइवर्सिटी नहीं है। वो एक ही तरह की बातें सुनते हैं, एक ही तरह से काम कराते हैं, एक ही तरह एक सेट के लोगों को जो रूलिंग होते हैं उनके पक्ष में चले जाते हैं। तो ये भारत की जो स्थिति है, डाइवर्सिटी का अभाव, मैं समझता हूँ कि वो भारत की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बुरी स्थिति है। इसको जब तक आप नहीं वो करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि कोई समस्या का समाधान होने वाला है।
जी, बहुत अच्छा लगा उर्मिलेश जी आपसे बात कर, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके विचार हमें बताए, SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।